आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज प्रलय इतिहास। अच्छे अच्छे इंसान का दृष्टिकोण बदलने की क्षमता रखता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप किसी जगह, व्यक्ति या देश का इतिहास जानने निकलते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे सच आते हैं जिनको जानकर आप अवाक रह जाते हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी अमानवीय कृत्यों से इतिहास के पन्नों को लाल रंग के रंग से रख दिया है। इसमें एक नाम आता है जापान का भी। हाँ, ये सच है, जापान पर कई जुल्म हुए हैं। जापान ने एटम बॉम्ब अटैक के रूप में कभी अपना अस्तित्व भी खो दिया था। लेकिन यकीन मानिए, प्रलय के आज के अंक में जब हम आपके सामने कैसे जापान को पेश करेंगे तो आपका किसी भी देश को एक तरीके से देखने का तरीका और नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा और आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज की इस खास पेशकश के साथ जिसका नाम है प्रलय। इस इतिहास को हम जानेंगे, मगर उससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वो प्रयोगशालाएं किस तरह की होती हैं जहां कोई खतरनाक वायरस रखा जाता है, या फिर जहां दुनिया के सबसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। बायोसेफ्टी लेवल या BSL उस सावधानी या तैयारी को कहते हैं जिसमें खतरनाक रोगाणुओं जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया को प्रयोगशालाओं के अंदर रखा जाता है। बायोसेफ्टी लेवल BSL पर लैब की 4 श्रेणियां मौजूद होती हैं। इनमें बायोसेफ्टी लेवल 1 यानी कि BSL 1, बायोसेफ्टी लेवल 2 यानी कि BSL 2, बायोसेफ्टी लेवल 3 और 4 यानी BSL 3 और 4 कहा जाता है। बाकी के लेवल के बारे में आप समझ जाएंगे जब हम आपको लेवल 4 के बारे में बताएंगे। बायोसेफ्टी लेवल 4 जैव सुरक्षा सावधानियों का उच्चतम स्तर होता है। ऐसे लैब बेहद संवेदनशील होते हैं। दरअसल यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा रोगाणुओं को रखा जाता है और उन पर लगातार प्रयोग ही चलता रहता है। साथ ही यहाँ पर कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जो आम तौर पर काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसीलिए इसे लेवल 4 पर रखा जाता है। बाकी के सारे लेवल्स के इससे खतरे के अनुमान कम होते हैं। चलिए, अब आपने लैब जान ली तो आगे बढ़ते हैं चर्चा की तरफ। तो बात है साल 1930 से 1945 के बीच की, जब इंपीरियल जापानीज आर्मी के सैनिकों ने चीन के पिंगफोंग जिले में एक प्रयोगशाला बना रखी थी जिसका नाम था यूनिट 731 लैब। चीन का इससे कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि लैब में किए जाने प्रयोग चीन के जिंदा लोगों पर होते थे। शिगा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के एक प्रोफेसर काट्सो निशियामा के कहने पर जापान सरकार ने अपने पुरालेख विभाग में कई चीजें निकलवाईं। इसका मकसद था ये जानना कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन के साथ कैसा और कितना बर्बर रवैया दिखाया था। इसी क्रम में यूनिट 731 से जुड़े दस्तावेज सामने आते हैं। इन कागजों में 1000 से ज्यादा जापानी डॉक्टरों, नर्सों, सर्जन और इंजीनियरों का जिक्र था जिन्होंने चीन के जिंदा लोगों को अपने खतरनाक और जानलेवा प्रयोगों का हिस्सा बनाया था। साल 1990 के आखिर में पहली बार जापान ने माना था कि उनकी एक यूनिट ने चीन के लोगों पर बर्बर प्रयोग किए, लेकिन उन प्रयोगों के बारे में तब भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। धीरे धीरे इसकी जानकारी सामने आती गई जो मजबूत से मजबूत इंसान को भी, यकीन मानिए, डरा और सहमा कर रखते की। जिंदा इंसानों को यातना देने के लिए खास प्रयोग था जिसका नाम था फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। योशिमुरा हिसातो नाम के एक वैज्ञानिक को इसमें खासा मजा आता था। वो ये देखने के लिए प्रयोग करता था कि जमे हुए तापमान पर शरीर का क्या होता है। इसे जांचने के लिए चीनियों के हाथ पैर ठंडे पानी में डुबो दिए जाते थे। जब इंसान पूरी तरह से सिकुड़ जाता तब उसके हाथ पैर तेज गर्म पानी में डाल दिए जाते। इस प्रक्रिया में हाथ पैर पानी में लकड़ी के चटकने की आवाज करते हुए फट जाते। इसमें काफी जाने गई, लेकिन प्रयोग फिर भी चलता रहा। इसी यूनिट का एक और हिस्सा था जिसे मारुटा के नाम से भी जाना जाता था। इस शाखा का प्रयोग भयंकर यातना देने वाला था। इसके तहत ये देखने की कोशिश की जाती थी कि इंसान का शरीर कितना टॉर्चर झेल सकता है। चीनी सेना को बिना बेहोश किए धीरे धीरे उनके शरीर का एक एक अंग काटा जाता था। इसमें सेना के बहुत से अधिकारियों की मौत हो गई तड़प तड़प कर, जिसके बाद आम चीनी जनता पर यह प्रयोग होने लगा। एक और प्रयोग के तहत स्वस्थ लोगों में हैजा या फिर प्लेग के पैथोजेंस डाले जाते थे। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति के शरीर की चीड़फाड़ से ये देखने की कोशिश होती थी कि बीमारी का शरीर में किस हिस्से पर असर हुआ है। वायरस से इन्फेक्टेड करने के बाद इंसान के मरने का भी इंतजार नहीं किया जाता था, जिंदा रहते हुए ही उसके शरीर की चीड़फाड़ होती थी। इस दौरान बहुत से लोगों की गैंग्रीन से ही मौत हो जाती थी। अगर कोई मरीज इतनी यातना के बाद भी जिंदा बच जाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता था, यानी कि उसे फाइनली मौत दे दी जाती थी, लेकिन वो भी अलग तरीके से। किसी भी नए हथियार के बनने पर भी चीनी लोगों पर उनका प्रयोग होता था, लेकिन यूनिट 731 का सबसे भयावह प्रयोग था सिफिलिस प्रयोग। उस दौर में सैनिकों में यौन रोग सिफिलिस आम था, तब ये लोग लाइलाज था और इसी कारण काफी सैनिक इस बीमारी से मरते थे। यही वजह है कि इस लैब ने चीनियों पर इसका प्रयोग शुरू किया। इसके तहत चीनी कैदियों को सिफिलिस से संक्रमित किया जाता और फिर उन्हें तरह तरह की दवाइयां दी जाती थी। कई बार यौन रोग के शिकार पुरुषों को स्वस्थ चीनी महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने को कहा जाता था, ताकि ये देखा जा सके कि यौन बीमारी फैलती कैसे है, और इस दौरान ज्यादातर कैदियों की बीमारी से मौत हो जाती थी। एक प्रयोग में चीनी औरतों के साथ बलात्कार करके उन्हें गर्भवती किया जाता था और फिर उनमें किसी बीमारी का वायरस डाल दिया जाता था, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु की स्टडी की जा सके। इस रिसर्च के मकसद में लिखा हुआ था फाइंडिंग्स इनटू सिविलियन मेडिसिन। हालांकि बाद में ये रिसर्च पेपर कहीं भी नहीं मिल सका। इसी तरह से एक और प्रयोग भी था जिसमें जर्म वॉरफेयर भी कहा जाता है इसे। इसमें जानलेवा बीमारियों की जर्म्स को चीनी सेना और आम लोगों के भीतर डाल दिया जाता था और उन्हें एक दूसरे को संक्रमित करने के लिए छोड़ दिया जाता था। साल 1940 के अक्टूबर में जापानी बम वर्षक विमानों ने एक चीनी गांव कुत्सहो पर बमबारी की थी, जिसमें एक एक क्ले बम के भीतर 30,000 संक्रमित पिसु थे। पूरा गाँव लाल लाल धुएं से नहा रहा था, जिसके बाद गाँव का हर एक व्यक्ति प्लेग से मारा गया था। इसके बाद प्लेग यहां से वहां फैलता गया। बाद में इसके सारे रिकॉर्ड्स जला दिए गए। माना जाता है कि इस रिसर्च में शामिल बहुत से जापानी देश में ही कई विश्वविद्यालयों या ख्यात जगहों पर काम करने लगे थे। हालांकि अब तक ऐसा कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है। भले ही इनका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात जरूर मानी जा सकती है कि जितनी किस्म की यातनाएं सामने आती हैं, वो किसी भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की मानवीय यातना की सोच की परिधि से कई गुना ऊपर है यहाँ पर। और इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगाइए कि ये सभी दस्तावेज अब मौजूद नहीं है। आज के लिए प्रलय के इस अंक में इतना ही। मिलेंगे आपसे प्रलय के अगले अंक में लेकर कहानी किसी और भयावह और दर्दनाक घटना की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।